والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اکثر رات میں مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے تھے تاکہ اگر کسی کی کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کرے. ایک رات میں بھی ان کے ساتھ تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے. اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو. لڑکی یہ سن کر بولی کہ امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری فرمایا ہے کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے. ماں نے یہ سن کر کہا کہ بیٹی اب تو ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھ رہے, انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے یا نہیں, جاؤ دودھ میں پانی ملاؤ. لڑکی نے یہ سن کر کہا خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں. اس وقت اگرچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھ رہے لیکن میرا رب عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کو سنا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے شادی شدہ ہونے کے بارے میں معلومات کی تو پتا چلا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے گھر اپنے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے لیے پیغام بھیجا, انہوں نے بخوشی قبول کر لیا اور اس طرح سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ان سے ہوئی. پھر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کا خوف یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے اور یہ حضرات عبادت کرتے, ریاضتیں کرتے, نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں اللہ عز و جل کا خوف رہا کرتا تھا. और बदकिस्मती से आज हमारे दिलों में लोगों का डर तो होता है मगर अपने रब्बे करीम का खौफ नहीं होता जो दिलों के हालात जानता है। याद रखिए कि ये जो डर होता है ना अल्लाह का खौफ, अल्लाह देख रहा है, इससे दुनिया और आखिरत की भलाइयां हासिल करने का सबब है। ये जो डर है ना अल्लाह का खौफ, अल्लाह देख रहा है, ये जहन्नम से नजात का सबब बन सकता है। ये जो जहन बनना है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का डर है, तो ये गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। हजरत सैयदना रबिया बिन उस्मान तीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक शख्स बहुत गुनाहगार था, इसके सबब इसके शबो रोज अल्लाह की नाफरमानी में गुजरते थे, वो गुनाहों के गहरे समुन्द्र में गर्क था। फिर अल्लाह पाक ने उससे भलाई का इरादा फरमाया और उसके दिल में यह एहसास पैदा फरमाया कि अपने आप पर गौर कर तो कि तू कर क्या रहा है। और अल्लाह पाक जब अपने किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे एहसास और गुनाहों पर शर्मिंदगी ये अता फरमाता है, तो उस पर भी अल्लाह ने करम फरमाया और उसे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी हुई, गफलत के पर्दे आंखों से हटे, सोचने लगा कि बहुत गुनाह हो गए, अब मुझे अल्लाह करीम की बारगाह में तौबा कर लेनी चाहिए। चुनाचे उसने अपनी जोजा से कहा, मैं अपने पिछले तमाम गुनाहों पर शर्मिंदा हूं और अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, अब मैं किसी ऐसी हस्ती की तलाश में जा रहा हूं जो अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करे। इतना कहने के बाद वो शख्स सहरा की तरफ चल पड़ा। जब एक वीरान जगह पहुंचा तो जोर जोर से पुकारने लगा, ए जमीन तू अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे लिए सिफारिश करने वाली बन जा, ए आसमान तू मेरा सिफारिशी बन जा, ए अल्लाह पाक के मासूम फरिश्तों तुम मेरी सिफारिश करो। वो जारों कितार रोता रहा और इसी तरह सदाएं बुलंद करता रहा, हर हर चीज से कहता कि तुम मेरी सिफारिश करो, मैं अब अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूं, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। वो शख्स मुसलसल इसी तरह पुकारता रहा, बिल आखिर रोते रोते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आहोजारी और गुनाहों पर शर्मिंदगी का ये अंदाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया। अल्लाह ताला ने उसकी तरफ फरिश्ता भेजा जिसने उसे उठाया, उसके सर से मिट्टी वगैरह साफ की और कहा कि ए अल्लाह पाक के बंदे, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी तौबा अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो गई है। इस पर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अल्लाह करीम आप पर रहम फरमाए, अल्लाह करीम की बारगाह में मेरी सिफारिश कौन करेगा, वहां मेरा सिफारिशी कौन होगा। फरिश्ते ने जवाब दिया कि तेरा अल्लाह पाक से डरना, तेरा अल्लाह पाक से डरना, तेरा यही अमल अल्लाह की बारगाह में तेरी सिफारिश करेगा। तो ए आशिकान रसूल, ए आशिकान गौसे पाक, हमने देखा कि जब एक नौजवान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, उसके दिल में खौफे खुदा पैदा हो, तो उसने अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली और रोजे कयामत अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी सिफारिश करने वाले की तलाश में निकला, तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते के जरिए से तौबा कबूल हो जाने की खुशखबरी सुनाई। तो यकीनन जिन खुश नसीबों को सही मानों में अल्लाह पाक का खौफ नसीब हो जाए, वो हर हाल में अल्लाह पाक से डरते हैं और गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, तो इसके इनाम में अल्लाह पाक उन पर अताओं की बारिशें फरमा देता है। तो हम जबान से कहते हैं, हमारा जबान से तो ये इकरार होता है कि हम अल्लाह से डरते हैं, मगर अमीर अल सुन्नत क्या खूब फरमाते हैं कि क्या अल्लाह से अगर डरते होते तो क्या हमारी नमाजें कजा होती, अल्लाह से डरते होते तो क्या रमजान के रोजे बिला इजाजत से शरीर छोड़ते, अल्लाह पाक से डरते होते तो क्या हम अपने आप को बदनिगाही पर पेश करते। तो वाकई ये بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کانسیپٹ اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہے وہ ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ خوف جو ہے نا, یہ خوف یہ اخروی نجات کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ عبادات کی بجا آوری اور ممنوع چیزوں سے باز رہنے کا عظیم ذریعہ, یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے کہ بھائی ان چیزوں سے بچنا ہے, اللہ پاک کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے ہمارے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت کی اصل اللہ پاک کا خوف ہے. یہ خوف خدا کیا ہے, خوف خدا کیا ہے سنیے. امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی, اس کی ناراضی, اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے. اور امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر, میرے بارے میں اللہ کی کیا خفیہ تدبیر ہے, اس سے ڈرنا, اس کی بے نیازی, اس کی ناراضی, اس کی گرفت یعنی پکڑ, اس کی طرف سے دیے جانے والے عذابوں, اس کے غضب, اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام جو ہے یہ خوف خدا ہے. زبان قال سے کہتے ہیں لیکن جو ہمارا حال ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی یوں گزار رہے ہوتے جیسے ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. یاد رکھیے کہ خوف خدا یہ مومنین کی لازمی صفات میں سے ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے. چنانچہ پارہ 5, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بڑی پیاری بات کہیں پڑھی ہے کہ ہرن ڈیئر اس کی رفتار جو ہے یہ شیر سے تیز ہوتی ہے. جو کیلکولیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہرن کی رفتار یہ شیر سے تیز ہوتی ہے. یعنی یوں کہا گیا کہ ہرن کی رفتار تقریباً 75 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑتا ہی ہے, جبکہ شیر کی زیادہ سے زیادہ رفتار یہ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. تو آخر جب اتنا بڑا فرق ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب کبھی شیر اگر ہرن کے پیچھے دوڑتا ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جب ہرن کی جو سپیڈ ہے وہ 75 کلومیٹر پر آور ہے اور لائن شیر جو ہے یہ جو دوڑتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی رفتار جو ہے وہ 65 کلومیٹر پر آور ہے, 10 کلومیٹر فی گھنٹے کا فرق ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ جب کبھی شیر ہرن کا پیچھا کرتا ہے تو ہرن پکڑا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب بھی شیر کو دیکھ کر جان بچانے کے لیے ہرن بھاگتا ہے تو اس کے دل میں پکا یقین ہوتا ہے کہ شیر نے اسے چھوڑنا نہیں ہے, وہ شیر کے مقابلے میں کمزور اور ناتواں ہے. یعنی سب سے پہلے تو ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے کہ اس سے بچ کر نکل نہیں سکتا وہ, تو نجات نہ پا سکنے, یعنی یہ اس کو ڈر ہے کہ میں شیر سے بچوں گا نہیں. اب کیا ہوتا ہے, وہ پیچھے بار بار مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. اب جیسے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کی اسپیڈ ٹوٹتی ہے, اور جیسے اسپیڈ ٹوٹتی ہے تو بالآخر شیر اس تک پہنچ کر اس کو پکڑ لیتا ہے. تو یہ جو چیز ہے انسان کی کہ جناب میں پکڑا جاؤں گا, میں کسی طرح بچ نہیں سکتا ہوں, تو یہ हमने सुना कि एक जानवर को भी इसकी जो सलाहियत है उसको कम हो जाती है, लेकिन हम इस मामले में अपने आप से पूछें कि अल्लाह का डर है तो फिर ये गुनाहों का सिलसिला क्यों है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वस्फ यानी खौफ खुदा के हवाले से जो फजाइल बयान किए वो भी सुन लीजिए ताकि इससे और रगबत बढ़े कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है, मुझे अपने रब अज़्ज़ा वजल की इज्जत और जलाल की कसम, मैं अपने बंदे पर दो खौफ जमा नहीं करूंगा और ना उसके लिए दो अमन जमा करूंगा, अगर वो दुनिया में मुझसे बेखौफ रहे तो मैं कयामत के दिन उसे खौफ में मुब्तला करूंगा, और अगर वो दुनिया में मुझसे डरता रहे तो मैं बरोज़े कयामत उसे अमन अता फरमाऊंगा। काश हमें डर नसीब हो जाए, काश हमारी सोच बन जाए कि अल्लाह देख रहा है। एक और हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन का दिल अल्लाह पाक के खौफ से लरसता है तो उसकी खताएं इस तरह झड़ती हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। तेरे डर से सदा थर थर रहूं कांपता या इलाही, मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही। वाकई ये एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और याद रहे कि कब्र व हश्र और हिसाब व मीजान के हालात सुने पढ़ लिए, चंद आहें भर ली या अपने सर को चंद बार इधर उधर फेर लिया, कफे अफसोस मल लिया, चंद आंसू बहा लिए, ये काफी नहीं बल्कि इसके साथ खौफे खुदा के अमली तकाजों को पूरा करते हुए गुनाहों को छोड़ देना और इताते इलाही में मशगूल हो जाना ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो निगान सुन्ना ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि हम गुनाहों का मामला सुनकर, ऐसे बयाना सुनकर हम खौफ ज्यादा हो जाते हैं, तौबा भी कर लेते हैं मगर फिर गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो बड़ी प्यारी मिसाल दी कि अगर कोई नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर अपने आप को सवार कर जब वो अपने घर से निकलता है तो क्या कभी देखा है कि मिट्टी उड़ रही हो और वहां जाके वो खड़ा हो जाए? उसके दिल में होता है ना कि अभी तो मैंने अपने आप को धोया है, अभी तो साफ सुथरे कपड़े पहने, तो जहां इस तरह की गंदगी होगी आलूदगी होगी जाएंगे नहीं, कि इसलिए कि मैं अपने आप को धोया है। तो अगर आपने मैंने अगर अपने आप को गुनाहों से बचने का एक जहन बनाया, अल्लाह की बारगाह में तौबा भी कर ली और अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लिया, तो अब हमें इस बात पर लाजिम है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें कि जहां अपने आप को गुनाहों में मुब्तला होने से हम बचा नहीं सकते। ये बहुत जरूरी है मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। और काश अल्लाह ताला हमें अपना डर और खौफ नसीब फरमाए और हम अपने गुनाहों पर एक काश के आंसू बहाने वाले बन जाएं, काश हम आंसू बहाने वाले बन जाएं कि वाकई ये बहुत बड़ी एक नेमत है कि जो नसीब हो जाए, और ये नसीब में लाना है ताकि हम अपने आने वाली नस्लों की बका कर सकें। यानी एक बाप है अगर वो नेक और परहेजगार नहीं है, मुत्तकी नहीं है, उसका ये असर जो है इसकी फैमिली पर पड़ेगा, फैमिली पर पड़ेगा। अगर वो उस्ताद है, उस्ताद अगर तकवा और परहेजगारी इख्तियार नहीं करता, उसकी ये बदहाली जो है ये इसके शागिर्दों पर असर पड़ेगी, क्योंकि वालिदैन और उस्ताद ये रोल मॉडल होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। और हमारी नस्लों के लिए इनका मुत्तकी और परहेजगार होना बहुत जरूरी है। क्या बाप सिगरेट पी रहा और बेटे को कह के सिगरेट ना पिया करो, आप बताएं क्या बेटा सिगरेट पीने से बचेगा? हो सकता है आपके सामने ना पिए लेकिन अकेले पिएगा। तो हम अगर नेकी की तरफ माइल होते हैं, उलमा फरमाते हैं कि किसी बंदे का नेक होना ये सिर्फ इसकी जात को फायदा नहीं देता बल्कि इसकी नस्ल दर नस्ल को फायदा देता है। आजकल के हालात मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों हमारे सामने हैं, गुनाहों से बचना ये बहुत मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं कि हम अपने आप को नेकियों की तरफ लाएं, रागिब हों। अगर किसी के घर में कोई नहीं है नेकी की तरफ, वो खुद तो हिम्मत करे ना, वो कहे मैं तो बाप नहीं हूं ना भाई, मैं तो बेटा हूं, मेरे वालिदैन ऐसे करते हैं, मेरे घर वाले ऐसे करते हैं, तो आप हिम्मत करें। हो सकता है कि आपकी नेकोकारी उनको भी नेकी की तरफ ले आए, हो सकता है आपकी नेकोकारी आपके भाई बहनों को सुन्नतों के रास्ते पर चलने का एक जरिया बन जाए। तो ऐ काश कि इस तरह हमें ये सोच नसीब हो जाए। और अगर हम चाहते हैं कि गुनाहों से बचने वाले नेकियां करने वाले बन जाएं और अल्लाह करीम हमें खौफ खुदा की लाजवाल दौलत से माला माल फरमाए, तो इसका एक तरीका ये भी है कि खौफ खुदा रखने वाले बुजुर्गान दीन के अकवाल, इनके वाकयात को सुने पढ़ें और इनमें गौर व फिक्र करना अपनी आदत में शामिल कर लें। आइए चंद बुजुर्गान दीन के फरामीन सुनते हैं और देखते हैं कि ये हजरात खौफ खुदा से कैसे थर थर कांपते हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर मुझे जन्नत और दोजख के दरमियान खड़ा किया जाए लेकिन मुझे ये पता ना हो कि मुझे किस तरफ जाने का हुक्म होगा, तो मैं ये पसंद करूंगा कि राख हो जाऊं इससे पहले कि मुझे किसी तरफ जाने का हुक्म सुनाया जाए। एक और कॉल सुनिए, सैयदना अबूदुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त विसाल करीब आया, किसी ने अर्ज की मुझे कुछ वसीयत इरशाद फरमाए। इरशाद फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह करीम से डरने, अपने घर को लाजिम पकड़ने, अपनी जबान की हिफाजत करने और अपनी खताओं पर रोने की वसीयत करता हूं। एक और कॉल सुनिए, वहब बिन मुनब्बे रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तौरात में लिखा है कि जो बारगाह इलाही में समझदार बनना चाहे तो उसे चाहिए कि दिल में अल्लाह पाक का हकीकी खौफ पैदा करे। हजरत सैयदना इमाम अब्दुल रहमान इब्ने जौजी रहमतुल्लाही ताला ने फरमाते हैं खौफ इलाही ही ऐसी आग है जो शहवात को जला देती है, इसकी फजीलत इतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा ये शहवात को जलाए। अल्लाह पाक की नाफरमानी से रोके और इताअत की तरगीब दे, और क्यों ना हो कि इसके जरिए पाकीजगी, खौफ खुदा, तकवा, मुजाहिदा और अल्लाह पाक का कुर्ब अता करने वाले आमाल हासिल होते हैं। खौफ खुदा होगा तो ही नमाजों की तरफ रगबत होगी ना कि मेरी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, वरना आज नमाजी भी ऐसे अगर दोस्तों के साथ बैठते हैं जो बेनमाजी होते हैं तो होना तो ये चाहिए था कि नमाजी अपने उन बेनमाजियों को नमाज की तरफ ले जाता, लेकिन ऐसी आफत है कि नमाज पढ़ने वाला अगर बेनमाजियों के साथ किसी तरह बैठता है तो वो अपनी नमाज भी कजा कर डालता है। अभी हाल 31 दिसंबर का जो वक्त गुजरा, इतने मदनी चैनल पे सिलसिले चले, जो कुछ हुआ आप भी सोचे मैं भी सोचूं, अपने आप को गुनाहों से कितना बचाया, बचाने की कोशिश ही कहां की, नहीं नहीं हम बच जाएंगे हम हो जाएगा, फिर क्या हुआ, वही गैदरिंग, वही आना जाना, वही ढोल तमाशे, वही फायरिंगे, वही आतिशबाजी, वही हुल्लड़बाजी, नतीजा क्या हुआ, वक्त तो गुजर गया ना, लेकिन मेरे नामा अमाल में गुनाहों का एक पेपर दर्ज हो गया, एक स्टेटमेंट दर्ज हो गया कि अब मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा और इस बारे में मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि जनाब मैं इसका हिसाब कैसे दूंगा। सारी मखलूक के सामने जब मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ उम्र किस काम में सरफ की तो जवाब कैसे दूंगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इन बातों पर हमें अफसोस भी नहीं होता, रोना भी नहीं आता, तो खौफ खुदा में काश के रोना नसीब हो जाए कि खौफ खुदा में रोने से ख्वाहिशात ये खत्म होती हैं। और हमने ये भी सुना कि हमारे बुजुर्गान दीन खौफ खुदा में रोने वाले थे, खौफ खुदा में रोने वाले थे हमारे बुजुर्गान दीन, अपनी जिंदगी नेकियों में गुजारते थे, हमारे बुजुर्गान दीन अपने आप को गुनाहों से खुद बचाते थे, दूसरों को बचाने की कोशिश करते थे, नफ्स और शैतान को अपनी जात पर हावी नहीं होने देते थे, और हम तो खुद ब खुद ऐसी जगहों पर जाने के लिए भी नहीं रोकते। पता है कि इस दरवाजे में जब दाखिल होऊंगा अपने आप को गुनाहों से बचा ही नहीं सकूंगा, फिर क्यों दाखिल होते हैं? वही बात कि धुले तो हैं, दुनियावी तौर पर अगर साफ सुथरे लिबास बदन से अपने आप को रहते हैं तो अपने आप को मट्टी से गंध से बचाते हैं, लेकिन जब नेकियों की तरफ माइल हो गए फिर भी अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा पाते। तो ए आशिकाने साहबा, ए आशिकाने औलिया, ए आशिकाने गौसे पाक, गौर और फिक्र फरमाए। हजरत सैयदना सालेह मुर्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बाजा बजाने वाली एक लड़की ने किसी कारी कुरान के पास से वो गुजरी जो ये आयत मुबारक तिलावत कर रहा था, वह इन न जहन्नम लमुहीत तुम बिल काफिरीन, बेशक जहन्नम घेरे हुए हैं काफिरों को। आयत मुबारक सुनते ही लड़की ने वो बाजा फेंका, जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब इफाका हुआ तो सितार तोड़कर इबादत और रियाजत में ऐसी मशगूल हो गई कि आबिदा और जाहिदा मशहूर हो गई। एक दिन मैंने उससे कहा, अपने आप पर नरमी कर। यह सुनकर वो रो पड़ी और बोली कि काश मुझे मालूम हो जाए कि जहन्नमी अपने कब्रों से कैसे निकलेंगे, काश मुझे मालूम हो जाए कि अल्लाह के नाफरमान कुल सिरात कैसे उबूर करेंगे, काश मुझे मालूम हो जाए कि कयामत की होलनाकियों से कैसे नजात पाएंगे, खोलते हुए गर्म पानी के घूंट अल्लाह के नाफरमान कैसे पिएंगे, अल्लाह पाक के गजब को कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। ये बातें कहकर फिर बेहोश हो गई। जब इफाका हुआ तो बारगाहे खुदावंदी में यूं अर्ज गुजार हुई, ए रब्बे करीम, मैंने जवानी में तेरी नाफरमानी की, अब कमजोरी की हालत में तेरी इताअत कर रही हूं, क्या तू मेरी इबादत कबूल फरमा लेगा? फिर उसने एक आह खींची और कहा, आह कल बरोज़े कयामत कितने लोगों के ऐब खुल जाएंगे। फिर उसने एक चीख मारी और ऐसे दर्द भरे अंदाज में रोई कि वहां मौजूद सब लोग उसकी शिद्दत गिरिया उजारी, उसके शिद्दत से रोने के सबब वो भी रोने लगे। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम भी गौर करें कि कयामत के मैदान में, यानी होता है ना कि आज अगर 10-20 अफराद ही हों ऑफिस में और हमारी कोई भी कमजोरी है, हम ये नहीं चाहते कि यार किसी के सामने जाहिर हो, मेरा स्टेटमेंट अगर गलत हो गया, मेरी परफॉर्मेंस गलत हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि इदारे में मेरी बदनामी ना हो, मैं अगर कोई भी ऐसी बात करते कहीं पकड़ा गया तो मुझे सबके सामने पेश ना किया जाए, मेरा जुर्म करते हुए किसी ने वीडियो बना ली, मैं इस बात से डरता हूं कि कहीं यार ये वीडियो वायरल ना हो जाए, बल्कि खुद हमारा एक जहन है, कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं लिखा होता है ना, कैमरे की आंख आपको देख रही है, स्पीड स्लो हो जाती है, कैमरे की आंख आपको देख रही है, किसी दफ्तर में जा रहे हो और दूर से नजर आए कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, वो कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है पता ही नहीं है, लेकिन खाली वो कैमरे का खाली डब्बा भी लगा देना कोई, तो हमें इस बात का डर होता है कि नहीं यार कैमरे की आंख देख रही है। गाड़ी चला रहे हो, किसी के बाप से नहीं डरते, सिग्नल तोड़ते हुए खूब स्पीड से चला रहे हैं, लेकिन अगर किसी सिग्नल के आगे दो सिपाही खड़े हो, अब क्या पोजीशन है? अब भी तोड़ेंगे, अब नहीं तोड़ेंगे, कि नजर है कि जनाब अगले सिग्नल के पार दो सिपाही खड़े हैं, मैं तोड़ूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो दुनियावी ऐसी बहुत सारी मिसालें कि जिसके मुताबिक अगर देखा जाता है तो ये है कि हम डरते हैं, लेकिन दुनियावी तौर पर तो डरते हैं, लेकिन जब ये जहन है कि अल्लाह देख रहा है मैं कहां हूं क्या कर रहा हूं, लेकिन फिर अपने आप को गुनाहों से बचा नहीं पाते। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ मदनी चैनल के नाजरीन, गाने बाजे, मौसीकी, आलात लहु व लईब, इस आफत ने भी मुसलमानों की अक्सरियत को याद इलाही और खौफ खुदा से गाफिल रखा है। मौसीकी یہ بدقسمتی سے مسلمانوں کی نس نس میں اتر چکی ہے. تقریباً ہر ہر چیز میں موسیقی مسلط ہے. کار ہو، ہوائی جہاز ہو، ٹرک ہو، بس ہو، ٹیکسی ہو، سوزوکی ہو، مکان ہو، دکان ہو، کارخانہ ہو، گودام ہو، ہوٹل ہو یا پان کی دکان، تقریباً ہر جگہ موسیقی کی دھنیں. بچہ آنکھ ابھی کھولے گا تو موسیقی کے سروں میں سر بج رہے ہوں گے اس کے آگے. بیچارے کا پنگوڑا جو جھولا ہوتا ہے جس میں اس کو آرام کرنا ہوتا ہے، اس پہ بھی موسیقی والا کھلونا لٹکا دیتے ہیں کہ یہ اگر کچھ سنے تو بس یہ موسیقی سنتا رہے. جو اس کو موسیقی کی سناتا ہے وہ سلاتا ہے، اسی کو سنتے سنتے وہ سوتا ہے. شاید یہی یہ سبب ہے جنریشن کا کہ اب جو نیو جنریشن آ رہی ہے وہ موسیقی کو چھوڑ نہیں پا رہی. شاید اس کی وجہ بھی یہی نظر آتی ہے کہ بچپن سے ہی جیسے انہوں نے کان ان کے مطلب سننے کی سماعت شروع ہوئی موسیقی ہی سنی ہے. ماں باپ نے کوئی بھی کھلونا ان کو دیا ہے تو موسیقی ہی دی ہے. اگر پہننے کو جوتا دیا وہ بھی موسیقی والا ہی دیا، ٹیفن باکس بھی دیا وہ بھی موسیقی والا ہی دیا، اسکول بیگ دیا وہ بھی موسیقی والا ہی دیا، کوئی اچھا پین گفٹ کیا وہ بھی موسیقی والا ہی دیا، کوئی گھڑی پہننے کو دی وہ بھی موسیقی والی ہی دی. غور کریں، یہی تقریباً ہمارے یہاں کا کلچر آج یہی نظر آتا ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے بچ سکیں گے کہ موسیقی، یاد رکھیے، یہ شیطانی ایجاد ہے. اور اس کے بارے میں دنیا اسلام کے مشہور و معروف حنفی بزرگ عارف باللہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ موسیقی کیسے ایجاد ہوئی. کہ اللہ پاک نے سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد سریلی آواز عطا فرمائی تھی. آپ علیہ السلام کی خوش الہانی سے پہاڑ وجد میں آ جاتے، پرندے اڑتے اڑتے گر پڑتے، چرندے درندے آواز سن کر جنگلوں سے نکل آتے، درخت جھومنے لگتے، بہتا پانی تھم جاتا، جنگلی جانور وغیرہ ایک ایک ماہ تک داؤد علیہ السلام کی آواز کو سن کر کھانا پینا چھوڑ دیتے، چھوٹے بچے رونا اور دودھ مانگنا چھوڑ دیتے. آپ علیہ السلام کی پرسوز آواز کی تاثیر سے بعض اوقات انسانوں کی روحیں پرواز کر جاتی. ایک بار آپ علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کر 100 عورتیں وفات پا گئیں. اب شیطان آپ علیہ السلام کی نیکی کی دعوت دینے کے انداز سے بڑا پریشان تھا. آخر کار اس نے بانسری اور تمبورا بنایا اور خوب گانا بجایا. اب لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کون تھا؟ جو سعادت مند تھا، داؤد علیہ السلام کی پرسوز آواز کا شہدائی تھا، اور جو گمراہ ہوئے وہ شیطان کے سازوں اور گانوں کی طرف مائل ہو گئے، میوزک سنتے رہے. تو یاد رہے کہ گانا یہ شیطان کی ایجاد ہے، جیسا کہ تفسیرات احمدیہ کی اس روایت میں بھی فرمایا اور اس کی تائید ہوئی. اور شیطان کے دھوکے سے خبردار کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا بجایا. تو اے عاشقان رسول، ہم غور کریں اور سوچیں کہ شیطان کے اس معاملے میں جو ہماری کیفیت ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے، کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو گانے بازوں سے بچا نہیں پاتے، گانے بازوں سے بچا نہیں پاتے. شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ آئے تو اپنے آپ کو گانے سے بچاتے ہوئے وہ دوسری جگہ پہ چلا جائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک قاری صاحب نے بتایا کہ میں مدرسۃ المدینہ کی چھٹی ہوئی، مدنی منے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے، تو میں بھی اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے مدرسے میں، جب سب مدنی منے چلے گئے تو میں تھوڑی دیر میں نکلا، تو میں بس اسٹاپ کی طرف جا رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ دو مدنی منے یہ ایک بس میں چڑھے اور فوراً ہی نیچے اتر آئے، بس آگے چلی گئی. تو میں جب ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ بیٹا خیریت، آپ چڑھے اور پھر اتر آئے، تو آپ کے علاقے کی بس نہیں تھی؟ تو کہا گاڑی صاحب ہمارے علاقے کی بس تھی. پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ اب تو گاڑی تھوڑی دیر میں آئے گی. تو کہا اس گاڑی میں جب ہم چڑھے تو اس میں میوزک چل رہا تھا. तो हमने सोचा कि इसी गाड़ी में सफर नहीं करेंगे जिसमें म्यूजिक चल रहा हो, तो इसलिए अब दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। समझाओ कि समझाना मुसलमान को फायदा देता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो ना कि हम भी तो कोई ऐसा फेल करें ना कि जिसको सुनकर हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे मुतालिकीन जो हमारी तरबियत में है वो इन चीजों को हासिल करें। और याद रखिए, गाने बाजे ये कैसे आफत फैलाते हैं। अमीर अल सुन्नत ने अपने रिसाले गानों के कुफरिया अशआर में लिखा है, सैयदना इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैंने एक बार कबीले अरब के सरदार के मेहमान खाने में पड़ाव किया। वहां एक हबशी गुलाम जंजीरों में जकड़ा हुआ था और धूप में पड़ा था। तरस खाते हुए मैंने सरदार से कहा कि गुलाम मुझे बख्श दीजिए। सरदार बोला कि आलीजा, इस गुलाम ने अपनी मशहूर कुन सुरीली आवाज से मेरे कई ऊंट मार डाले हैं। किस्सा यूं है कि मैंने इसको खेत से अनाज लाने के लिए चंद ऊंट दिए, उसने हर ऊंट पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ लाद दिया। रास्ते भर गाता रहा, जिससे ऊंट मस्त होकर दौड़ते रहे, बेहाल होकर वापस आए और रफ्ता रफ्ता सभी ऊंटों ने दम तोड़ दिया। हजरत सैयदना इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि ये सुनकर मैं बड़ा ताज्जुब में आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। इतने में तीन चार दिन के प्यासे चंद ऊंट ये घाट पर पानी पीने आए। सरदार ने अफशी गुलाम को हुक्म दिया कि गाना शुरू करो। उसने नियाज खुश इलानी के साथ अशार पढ़ने शुरू कर दिए। देखते ही देखते ऊंटों पर कैफियत तारी हुई, वो पानी पीना भूल गए, मस्ती में झूमने लगे और बेताबाना जंगल की तरफ भागने लगे। इसके बाद सरदार ने गुलाम को बख्श कर मुझे आजाद करके मुझे बख्श दिया। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि खुश इल्हान इंसान की आवाज में कितना जादू है कि उसकी सुरीली आवाज से इंसान तो इंसान हैवान भी मस्त हो जाते हैं। जायज अशार मसलन हमद नात मनकबत वगैरह जायज तरीके पर अच्छी अच्छी नीयतों के साथ सुनना, ये बाईस सवाब। और बुरे अशार जैसा कि फिल्मों के फोहज गाने वगैरह सुनना, ये सबब अजाब है। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला हमें अकले सलीम अता फरमाए। और जैसा कि हमने सुना कि सैयदना दाऊद अला नबीना वाली सलातुसलाम को अल्लाह ताला ने खुश इलाहानी की नेमत अता फरमाई, और आप अली सलातो सलाम जब तिलावत फरमाते तो आपकी आवाज को सुनकर चरिंदे परिंदे भी तस्बीह करते। पारा 17 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वसखरना मा दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना वत्तैर, और दाऊद के साथ पहाड़ मुसखर फरमा दिए कि तस्बीह करते और परिंदे। मुफस्सिर शहीर अकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला ने इस आयत के तहत तफसीर नूरुल इरफान में फरमाते हैं, इस तरह के पहाड़ और परिंदे दाऊद अलैहि सलाम के साथ ऐसी तस्बीह करते थे कि सुनने वाले उनकी तस्बीह सुनते थे, वरना शजर हजर तो अल्लाह की तस्बीह करते ही रहते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम भी इन बुरी आदतों को छोड़ें और नाजायज सुनने से बेहतर है कि तिलावत कुरान सुने। कही आमीन। क्योंकि दिल में खौफ खुदा पैदा करने का एक जरिया कुरान की तिलावत है। दिल में खौफ खुदा पैदा करने का जरिया प्यारे नबी की हदीसें पढ़ना या सुनना है। दिल में खौफ खुदा पैदा करने के लिए बुजुर्गान दीन के खौफ खुदा के वाकयात पढ़िए। दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना हो तो नेक लोगों की सोबत इख्तियार कीजिए। दिल में खौफ खुदा पैदा करना हो तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल अपना लीजिए। दिल में खौफ खुदा पैदा करने के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, खौफ अगर हो तभी इंसान अपना मुहासबा कर सकेगा, अपने मामलात को सुधार सकेगा कि मैंने अपनी जिंदगी यूं ही गफलत में गुजार दी, अब मेरा क्या बनेगा। और इस मामले में अगर हम अपने बुजुर्गों के अंदाज देखते हैं तो वो कैलकुलेशन करते थे कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी, मेरी इतनी जिंदगी गुजर गई, इतने दिन मैंने गुजारे, इतने घंटे गुजारे, अब अल्लाह की बारगाह में मेरी हाजिरी होगी तो मेरा क्या बनेगा। हजरत तौबा बिन सुम्मा रहमतुल्लाह ताला ने अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए एक दिन हिसाब लगाया कि मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र कितनी है, तो 60 साल आपकी उम्र हुई। दिनों का हिसाब लगाया कि अगर 60 साल मैंने गुजारे तो दिन कितने गुजारे दुनिया में, तो कैलकुलेशन की तो पता चला कि 21,500 डेज मैं अपनी जिंदगी के दुनिया में गुजार चुका। फरमाया हाय अफसोस, अगर मैंने रोजाना एक गुना किया हो तो वो हकीकी बादशाह सिर्फ 21,500 गुनाहों के साथ मुलाकात करूंगा, और जब रोजाना 10,000 गुना हो तो क्या सूरत हाल होगी। ये सोचकर आप रहमतुल्लाही ताला ले गश खाकर गिर पड़े और आप रहमतुल्लाही ताला ले की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। तो अल्लाह ताला हमें हकीकी खौफ नसीब फरमाए और हमें नेकियों भरी जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबीयिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।